प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त विविंद की गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कंद गिरी गोवर्धन धाम की वृंदावन धाम की मायापुर धाम की मथुरा धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की तुलसी देवी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आल गोल टू संबल डबोटी आल गोल टू संबल डबोटी आल गोल टू गुरु एंड देहि नित्यं वद्योयम् देहा सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचति मर्हसि न संसोचितु मर्हसि देहि नित्यं अद्यायम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचति मर्हसि पढ़िए अनुवाद तथा शब्दानुवाद पहले देही भौतिक शरीर का स्वामी नित्यम शाश्वत अवध्याय मारा नहीं जा सकता अयम यह आत्मा देहे शरीर में सर्वस्य हर एक के भारत हे भारतवंशी तस्मात् अतः सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों जन्म लेने वाले को ना कभी नहीं तुम सोचतुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरण भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवत सिद्ध कर दिया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में पितामह भीष्म तथा गुरुण द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यही नहीं, यह नहीं कि आत्मा जैसा कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्ष्य रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा की प्रोत्साहन नहीं किया जा सकता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक आवश्यकता रहती है ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, शिक्षा से नहीं। ओम अज्ञान मीलांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरमीतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीशे गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकजाग्रह तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणामे। हरि प्रिये नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवान भागो पाणो महासाय चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरति से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवश आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई दिनों से आत्मा और शरीर के बारे में ये प्रसंग चलता आ रहा होगा, क्योंकि भगवान गीता के 11वें श्लोक से ही, गीता के दूसरे के 11वें श्लोक से ही आत्मा और शरीर के बारे में वर्णन करते करते 30 श्लोक तक इसका वर्णन किए हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। बड़ी ही असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। आप रोज ही ये बात सुनते होंगे, क्योंकि भूमिका पहला अध्याय जो है भूमिका है और दूसरे अध्याय में गीता सार है। तो भूमिका में बता कैसे भगवान कैसे अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, उनका मुख्य कारण यही था कि सब मारे जाएंगे। गुरुजन जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी है, जिनकी शिक्षा मैं ग्रहण कर आज हमारे हमको धनुर्धर अर्जुन के नाम से जाना जाता है, मैं एक विख्यात धनुर्धर हूँ, और उन्हीं की विद्या मैं उन्हीं के ऊपर लागू करूं। और पितामह जिनके गोद में जब छोटे बालक थे तो गुल्ली डंडा वगैरह खेलते थे, तो गुल्ली डंडे में जब अर्जुन हार जाते थे तो मारने के लिए आते थे तो भागकर पितामह के गोद में चले जाते थे और पितामह को बोलते थे दादाजी हमें बचाइए। तो बहुत बहुत खुशी होती थी पितामह जी को, भीष्म पितामह को बहुत खुशी होती थी अर्जुन को बचाने में, और पांचों पांडवों को बहुत प्रसन्न करते थे, हृदय से चाहते थे, हृदय में प्रेम था। और ये लोग भी हृदय में प्रेम करते हैं, एक सहज जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है और बच्चा भी माँ को बहुत प्रेम करता है, उसे हमेशा चिंता रहती है कैसे हमारे बच्चे का भलाई हो, और बच्चा भी माँ से बहुत खुश रहता है। वैसे ही सोच रहे थे कि ये पितामह जो कि हमारे राज्य के मुख्य हैं, मुखिया हैं, जिनके इशारे पर सब कुछ हो सकता है, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर अपने नियम के अनुसार यही राजा घोषित होते, सब कुछ त्याग कर यहाँ हैं, उनको मैं ऐसे त्यागी पुरुष जो संत महात्मा हैं, इतनी बड़े त्याग है जिनका नाम भीष्म पितामह देवदत्त से, मैं इनकी हत्या करूं? कभी ऐसा भी अर्जुन को यह विचार आया होगा कि क्या कृष्ण अपने गुरु की हत्या कर सकते हैं, संदीपनी को क्या मार सकते हैं, ये सब उनके मनों में विचार चल रहा था। ये बातें मैं एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे तो मैं बोल रहा हूँ, वो एक कथा कह रहे थे तो बोले थे कि क्या कृष्ण को ये अपने गुरु को मार सकते हैं, को हमको मारने के लिए विवश कर रहे हैं। लेकिन ये तो कृष्ण की इच्छा थी, वो तो भगवान है, परम परम भगवान है। और इस स्थिति में वो बोल रहे हैं कि देखो न तो जातुम न तमेव जातो नासम न तमेव जनाधिपाम न चवे न भविष्यम, ये न तो ये राजागर कभी भी नहीं मारे जाएंगे, और तो इसके लिए तुम क्यों शोक करते हैं, न भविष्य में मारे जाएंगे न इस समय मारे जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो तो शरीर तो मरेगा ही। तो अब यही भिन्नता बता रहे हैं कि इनका शरीर जाएगा मरेगा, लेकिन न तो हम जातु नासम न तमेव जता जनाधिपा। तो ये जितने भी लोग हैं ये मारे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि शरीर से अलग ही भी नहीं बता रहे हैं, और शरीर को बोलते हैं कि ये देह को नष्ट हो जाने के बाद में ये देह में ये शरीर नष्ट हो जाता है, फिर भी आत्मा अमर रहता है, आत्मा जो है अदाह्य है, इसे गीला नहीं किया जा, सुखाया नहीं जा सकता है, और यह नित्य है, अजो नित्यम शाश्वतम पुराणम, शाश्वत है, पुरातन है, इसका कोई जन्म मृत्यु का कोई आदि अंत कोई इतिहास नहीं है। तो इस तरह से कहते कहते बहुत सारी चीज वर्णन कर रहते हैं, न जायते मृते वा कदाचित नयम भूत्वा भविता न भूयम अजो नित्यम शाश्वतम पुराणम न हन्य ते हन्य मानी शरीर। शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन ये कभी भी नष्ट नहीं होगा, यह रहेगा ही, यह आत्मा जो है रहेगा। तो और शरीर जो है एक वस्त्र के तरह है, वंशान से जीर्णान ऐसा भी आया, जो पुराने वस्त्र होते हैं फट जाते हैं तो फिर हम उसको त्याग देते हैं, वैसे ही इस शरीर को भी आत्मा त्याग देगा, एक दिन पुराने हो जाएगा त्याग देगा, कभी कभी नए वस्त्रों को भी त्याग देता है। तो अर्जुन को किसी तरह से समझा कर वो युद्ध के लिए तैयार करते हैं। और फिर 29वें अध्याय में ये भी बताए हैं कि आत्मा एक ऐसा चीज है जिसके बारे में लोगों को बहुत भ्रमित है। आत्मा के बारे में लोगों को बहुत भ्रम है। कोई लोग इसे आश्चर्य से सुनते हैं, कोई लोग इसको आश्चर्य से देखते हैं, कोई आश्चर्य से इसके बारे में बताते हैं। आत्मा के बारे में बहुत भ्रम है और भ्रम होगा ही। आत्मा देखिए, आज हमारी शिक्षा प्रणाली इतना दोषपूर्ण है कि हम हर चीज बनाने की, भौतिक चीजें बनाने की बहुत सारे प्रयास करते हैं। जो शारीरिक संबंधी चीजें है उसको हम भौतिक चीजें बोलते हैं। शरीर नशवान है और भौतिक चीजें भी नशवान है। एक से एक विद्यालय है हर क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में विद्यालय है जिसमें कला के बारे में बताया है। आप फिल्म लाइन में चले जाए तो एक से एक कला, गाने के लाइन में चले जाएगा, एक से एक गाना के कैसे टोन होना चाहिए, कितना साउंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप बीटेक करते हैं तो उसमें कंप्यूटर कैसे, कंप्यूटर की सारी शिक्षाएं दी जाती है। कृषि क्षेत्र में चाहिए तो कृषि की सारी शिक्षाएं दी जाती है। हर चीज का क्षेत्र बनाया हुआ है। लेकिन यह दुख की बात है कि आत्मा को जानने के लिए कहीं भी विद्यालय नहीं है। कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर इनके बारे में शिक्षा दी जाती है, जहां पर, तो इसका नतीजा यह हुआ कि लोग उसे उपेक्षित समझते हैं कि जरूरी नहीं है। आत्मा और शरीर के बारे में जानने की जरूरत ज्यादा नहीं समझते हैं। भौतिक भोग की चीजों को ज्यादा शिक्षा दी जाती है आत्मा के बारे में जानने की, जो कि अति आवश्यक है। आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में जानना ही अति आवश्यक है। आत्मा शरीर में है, शरीर को धारण किया हुआ है, तो शरीर का अस्तित्व है। आत्मा शरीर से निकल जाता था, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। है कुछ अस्तित्व? कुछ भी नहीं है। खूब सुंदर स्त्री हो, विश्व सुंदरी हो, शरीर से उसका आत्मा निकल जाए तो क्या उसको शरीर को कोई संचित करके रखेगा कि विश्व सुंदरी है? आर्मी के अच्छा जवान, नेवी के अच्छा जवान, जो लड़ने में दक्ष हो, लेकिन जब उसको मार दिया जाता है तो कोई रखता है उस शरीर को? शरीर को तुरंत बोला जाता है कि जल्दी कीजिए। सबको हो जाती है। जो माँ बाप इतना प्यार करते थे, जो पत्नी इतना प्यार करती थी, जो बेटे इतने प्यार करते थे, वो भी बोलते हैं कि जल्दी करो। क्या जल्दी करो? इसको मतलब घर से जल्दी ले चलो और इसको श्मशान में इनको दफना दो, जला दो, जो भी कर दो। इसका मतलब शरीर अलग है, आत्मा अलग है। एक छोटी सी बालिका थी, उसके पिता का देहांत हो गया था, तो शव यात्रा जा रहा था, तो सब लोग राम नाम सत्य है बोलते रहे हैं। तो बोली कि सब लोग बोल रहे हैं, पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं, और वो सो क्यों रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं जिज्ञासा। ये तत्व इसी, यही है तत्व जिज्ञासा, जानना चाहिए। तो उसकी मां बताई कि तुम्हारे पिता जी मर गए। मरना मतलब क्या होता है? अब मां को भी एक उतनी ज्ञान नहीं है, बोले शरीर से आत्मा निकल गया। जक्ष महाराज, जो युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किए थे कि संसार में आश्चर्य की चीज क्या है। एक समय था जब हम लोग पढ़ते थे तो संसार में आश्चर्य की चीज में ताजमहल भी आता था और बहुत इमारतें, बहुत सारी चीज आती थी। वो तो चीज अभी तो वो भी उससे वो सब वैज्ञानिक हमारे ऊपर उठ गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा दूसरे चीज को वर्णन किया। बोले पश्यम अपि न पश्यति, देखकर भी लोग नहीं देखते हैं। क्या नहीं देखते हैं? एक व्यक्ति, उसी घर के व्यक्ति, शरीर छोड़ दिया, उसको श्मशान लेकर गया, उसको जला दिया गया, दफना दिया गया, राम नाम सत्य बोलते हुए लेकर गया था। कुछ समय के लिए चीज हमारी शुद्ध भी रहती है, अरे क्या हो रहा है, सब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो चीजें दिल में नहीं उतरता है कि हमारी भी बारी आने वाली है। दिल में नहीं उतरता कि हमारी बारी, हम ही उसी रास्ते के राही हैं। जिस दिन ये चीज समझ में आ जाएगा उस दिन हम भगवान को जानने के और आत्मा को जानने के कोशिश करेंगे। महात्मा बुद्ध हमेशा सत्य की खोज में रहते थे। तो देखे कि आदमी क्यों दुखित है, कोई बीमार है तो कोई गरीब है, खाने को नहीं है, बहुत दुखी होते थे। लेकिन एक दिन जब सत्य 100 यात्रा देखे तो उन्होंने 100 यात्रा से सारी शिक्षा प्राप्त कर ली और वो तपस्या करने लगे, सत्य की खोज में निकल गए और गया के लुबनी वन में उन्होंने खोज किया। स्वयं भगवान थे, शिक्षा देने के लिए आए थे। और एक समय आया कि जब उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई तो वही सत्य वही 100 यात्रा जा रहा था और बहुत सारे लोग रोते हुए जा रहे थे। तो भगवान बुद्ध, उनकी एक सेविका थी, उसका नाम कहीं बड़न है मुझे, मैं भूल रहा हूं, तो बोली, देखकर हंस रहे थे, तो पूछी तुम क्यों हंस, आप हंस क्यों रहे हैं? इसी सौ को देखकर आप महात्मा बन गए और इसी सौ को देखकर आप तपस्या करने लगे, आज हंस रहे। बोले पहले मैं जानता था कि मैं मरता हूं, अब यह मालूम है कि मैं नहीं वो मरता है, मैं नहीं वो मरता है, मैं कौन है? आत्मा। और वो मतलब शरीर, पहले मैं था, मुझे मालूम था मैं मर जाऊंगा। बोले ये तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं नहीं मरूंगा, ये शरीर मरेगा, ये नश्वर है। और हम देख रहे हैं दिन एक एक दिन करके हम हमारी मृत्यु हो रही है। हमारी शरीर जैसे बहुत बड़ा डंडा हो, थोड़ा थोड़ा काटिए तो छोटा होता जाता है, वैसे हम शरीर हमारी आयु जो है, हम जितने बोलते हैं कितने साल के हो, मतलब हमारी उम्र कम हो रही है दिन पर दिन, हमारी उम्र कम हो रही है। तो उसी को हम सोचते हैं जवान हो रहे हैं और ज्यादा उम्र हो रहा है, हम ज्यादा नहीं, हमारी उम्र कम हो रही है, हम मृत्यु के नजदीक दिन पर दिन, एक एक दिन कट रहा है हमारे, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। तो ज्ञानवान पुरुष यही खोज करेगा कि आखिर कौन ऐसा चीज है कि इसमें नहीं है, जो कि नहीं रहने से इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है और इसी का अभाव है। और देशों में तो है ही नहीं, हमारे भारत वर्षों में भी यदि कुछ प्रयास भी होता है तो आज के नेतागण इसको रूढ़िवादी और धर्म सापेक्षता, धर्म के पालक समझ कर उस पर विवाद खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते आगे धर्म के बारे में, आत्मा के बारे में असली ज्ञान जो है उसे शिक्षा नहीं होती है। और वो शिक्षा नहीं देने के कारण, जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, वो आज वो शिक्षा नहीं देने के कारण लोग दुखी हैं। संसार में कोई भी धनी व्यक्ति आप सोच सकते हैं कि सुखी है, सुखी नहीं है, उसको इनकम टैक्स का रेड, तो कभी बच्चे ही उसके आज्ञा नहीं पालन करते हैं, कभी धन का दुरुपयोग करने लगते हैं और कंपटीशन में वो हमसे आगे बढ़ गया, उसकी धन हमसे ज्यादा हो गया, इसी में वो दुखी रहता है और सुख को भोग नहीं पाता है। अपने जीवन के अनुभव में भी हम महसूस करते हैं। और एक बार एक परमाणु वैज्ञानिक आए थे, भाभा एटॉमिक का वो रिसर्चर थे और काफी उनको ज्ञान था, उनको एडवाइजर आज भी हैं, बुलाया जाता है। तो आए थे मुरारी बापू के कथा सुनने, तो हमसे मिला करते थे। तो बोले मैं एक चीज देखता हूं, ये भक्त लोग बहुत खुश रहते हैं, आपके यहां भक्तों को मैं बहुत खुश देखता हूं, क्या है उनको, कितना सैलरी मिलता है, क्या है? बोला सैलरी नहीं मिलता है, खाना और पीना, भगवान का प्रसाद मिलता है, कुछ नहीं मिलता है इनको, मिलता है दिन भर भगवान की सेवा करो फ्री में और माला जपो और सुबह आरती में आओ, यही है भगवान के मंदिर के नित्य काम, जिसमें वो कुछ नहीं प्राप्त करने के कारण ही खुश हैं। तो उनको ये शौक हुआ कि अरे कुछ नहीं प्राप्त करने के कारण खुश हैं। बोले आप देख रहे हैं खुश हैं, आप तो मान रहे ना, तो मैं तो ये मान रहा हूं कि यहां कुछ उनको मिलता ही नहीं है, तो आंतरिक चीज तो मैं जानता हूं। बोला प्रभु ये तो आप बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं, हम लोग तो उतना खुश नहीं है, हम लोग, हमारा बेटा बहुत कमाता है, सिंगापुर में रहता है, पैसे की अभाव नहीं है, हमको अभाव नहीं है, फिर भी हमारा मन दुखी रहता है, क्यों समझ में नहीं है। तो मैं उनको बोला आप जप कीजिए और गीता का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कीजिए। बोला सब अध्ययन आपने किया है, परमाणु बम का आप निर्माण कराकर लोगों को नष्ट कर सकते हैं, आप किसी की जिंदगी बचाने के लिए कभी भी प्रयास नहीं किए हैं, तो दुखी नहीं रहेंगे आप? किसी की जो सोचे हैं कि कभी किसी की जिंदगी पर, परमाणु से क्या होगा, विनाशकारी चीज है। तो बोले तो बात सही बोल रहे हैं, दूसरे बोले दूसरे देश को प्रतिरोध करने के लिए, दूसरे देश को सामना करने के लिए जरूरी है, इसका जरूरी नहीं है कि मतलब कि अपने को भूल जाए आदमी। खूब आदमी काम करता है, दिन भर काम करता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन भूख तो लगती है ना, तो शरीर के भूख को हम तृप्त करते हैं, आत्मा की भूख को भी तृप्त करना चाहिए। आत्मा का भूख क्या है? भगवान का दास होकर और भगवान का भजन करना। भगवान गीता में ये सब शिक्षाएं हमें गीता से प्राप्त होती है, गीता में भगवान ने बताया है, भागवत में बताया है, और भगवान के भागवत में भगवान के बहुत भक्तों का भी चरित्र आता है। क्यों आता है? कि उनके भक्त ने इस तरह से किया, वो हमको शिक्षा देने के लिए कि हमें भी हमारी भक्ति कैसे पौन हो, कैसे हमारी भक्ति में हम मजबूत हों, तो इसके लिए वो शिक्षा दी जाती है। उनके उनके बारे में बताया, उसने महारानी कुंती ने इतना भक्ति किया और भीष्म पितामह ने ऐसे भक्ति किया, ध्रुव महाराज ने इस तरह से भक्ति किया, प्रहलाद महाराज ने इससे भक्ति किया। क्यों? क्योंकि इनके भक्ति करने से हमको एक शिक्षाएं भी प्राप्त होगी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण चाहे होते तो युद्ध नहीं होता, युद्ध का सारा पाप कृष्ण पर ही जाता है। कृष्ण भगवान है, कभी उन पर पाप नहीं लग सकता है, सर्वव्यापी हैं, सबके हितैषी हैं, उस युद्ध में ही सबकी हित थी। एक धर्म होता है शारीरिक धर्म और एक धर्म होता है परोधर्म। ये परमात्मा है, परम पिता है, पिता अमस्य जगतो माता धाता पितामह, सबके धाता पिता हैं, पूरे जगत के। कोई भी एक व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मैं जगत के माता पिता हूं। कृष्ण ही गीता में, भगवान ने और सारे अवतार लिए हैं जिसमें, लेकिन इसने नहीं बोला कि मैं ही सब कुछ, ऐसा नहीं बोले हैं, लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान सब कुछ बोले हैं कि पिता अहमस्य जगतो महाता धाता पितामह, और अहम बीज प्रयोजिता, और जितने भी जीव हैं उनका बीज जो है इनसे ही निकला हुआ है, बीज प्रयोजिता है, उसके उद्धार इन्हीं से उद्गम हुआ है, यही उद्गम है हर चीज का। तो हमारी शिक्षा प्रणाली इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने गुरुकुल का निर्माण किया कि जिसमें बच्चों को अध्यात्म ज्ञान भी दिया जा सके। आज भी, आज तो थोड़ा कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा था, काफ़ी वृंदावन में छात्रों की संख्या काफ़ी थी, मायापुर में छात्रों की संख्या काफ़ी थी, विदेश में डॉलर्स में उन्होंने स्थापना किया था, छात्रों की संख्या काफ़ी थी। तो इससे क्या होता है, पहले जो है लोगों को गुरुकुल में भेजा जा सकता था त्याग की विद्या सीखने के लिए, इसको स्कूलों में भेजा जाता था, और क्या राजा क्या रंग क्या फकीर सबके बच्चे एक ही स्कूल में जाते, कोई फीस नहीं लगता था, और उनके सारे फी वहाँ के राजा वहन करता था, जो राज्य के राजा थे सारे फी देते थे। भगवान कृष्ण स्वयं गुरुकुल में गए तो उसी भेष में रहे जैसे सुदामा जी रहे, राजसी भेष में नहीं थे। तो गुरुकुलों में त्याग की विद्या सिखाई जाती थी, भोग की विद्या नहीं। भोग तो भोगने के लिए अपने आप आदमी सीख जाता है, जैसे बच्चे को, छोटा बालक हो, बहुत सारे प्रयास नहीं पड़ता है भाषा बोलने के लिए, वो बोलते बोलते सीख जाता है। वैसे ही भोग ऐसी चीज है कि बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, आदमी सीख ही जाता है। त्याग की विद्या सिखाई जाती, पहले लोग त्याग सीखते थे। हमारा भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है त्याग के कारण। बहुत बड़े त्यागी थे भरत जी, इनके नाम पर भरत पड़ा। हमारे भीष्म पितामह जी बहुत बड़े त्यागी थे, जिनको आज भी भागवत में उनका वर्णन आता है। क्यों? क्योंकि त्यागी थे बहुत। भोगियों का ठाट बाट का ज्यादा कहीं भी वर्णन नहीं हुआ है। भोगियों का ज्यादा मान सम्मान कहीं ज्यादा नहीं मिला है, त्यागियों को ज्यादा मिला है। तो हमें इस सरकार को जरूरत है कि ऐसी ही विद्या लोगों में दे, और हमें भी अपने बालकों को, हम तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर के बच्चे को ये शिक्षाएं बचपन से ही देना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं, हरा बांस है उसको धनुष बनाओ, जैसे मुड़ो मुड़ जाएगा। वो बांस जो पौड़ हो जाता है, जब सूख जाता है तो उसको बहुत मुश्किल होती है, है ना। कहा जाता है कि बूढ़ा तोता पोस नहीं मानता। जो तोता बूढ़ा हो गया उसको बोलो राम राम बोलने के लिए, वो नहीं बोलेगा, लेकिन छोटा तोता को बोलो राम राम बोलने के तो राम राम बोलना शुरू कर देता है। वैसे ही कौमारा माचरत पर धर्मान भागवत नियान, प्रहलाद महाराज खुद कहते हैं कि कौमार से बचपन से ही इसके आदत डालना चाहिए भक्ति का। वो बीज जब रहता है तो वही बीज हमारे जिंदगी भर काम करता है। दुनिया में हर जगह भोग की, सांसारिक भोग की चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आध्यात्मिक चीजें बहुत कम मिलेगी। और ये शरीर है भौतिक, और इस शरीर भी भौतिक की तरफ ही, हम साधु हैं फिर भी हमारे भी मन भौतिकता के प्रति खिंच जाता है। क्यों? क्योंकि चुंबक है, लोहे में ही होता है, और चुंबक लोहे को ही खींचता है। वैसे ही भौतिकता भौतिकता को खींचता है। अध्यात्म को लिए हमें जबरन भी जाना पड़ता है, समझे ना। मन नहीं लगता है फिर भी मन लगाना चाहिए। एक संत थे, बोलते थे कि एक दिन प्रवचन में बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बात है, कभी कभी हमारे स्टाफ को या किसी को मन नहीं होता है ड्यूटी में डालने का है, लेकिन जाकर थोड़ा काम कर देता है, बिना मन का काम करता है तो फिर भी वो वेतन का भोगी हो जाता है। जबकि संसार में कारण देखा जाता है, भगवान तो कारण रहित कारण भी नहीं देखते हैं। किसी ज्ञानम अथवा अज्ञानम उत्तम श्लोक नाम, जब ज्ञान से या अज्ञान से कैसे भी भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उसकी शुद्धि लेते हैं, उसको सुनते हैं, है ना। वो कारण नहीं देखते हैं। पांचों पांडवों को मारने के लिए जब ब्रज का इस्तेमाल किया था अस्थामा, तो भगवान ने कभी ये नहीं देखा कि अब हमको बोलेंगे तब जाएंगे। कारण रहित दयाल है, दया कर उनके भक्त हैं। उन्होंने जाकर अपने चक्र सुधारा से पांचों पांडवों की रक्षा की। माता कुंती वहां उपस्थित थी जब विदाई हो रहा था, वो द्वारिका जाना चाह रहे थे हस्तिनापुर से थे। तो हर व्यक्ति को भगवान का भक्ति करना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो मंदिर में रहता है उसी के लिए जरूरी है, यह सब के लिए नितांत जरूरी है। हवा सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, भोजन सबको चाहिए, सब निःशुल्क दिया हुआ है। वैसे ही ये भी भगवान की भक्ति भी सबको चाहिए, क्योंकि शरीर में शरीरधारी क्या है, आत्मा है, और आत्मा का एक ही धर्म है जिसको बोलते हैं जीव धर्म। और धर्म तो भगवान सब लोग, शरीर के धर्म अलग अलग लोग बनाए हैं, लेकिन जीव का धर्म भगवान स्वयं बनाए हैं। धर्मा तो सक्षात भगवत परिणता, धर्म का जो है ज्ञान और धर्म की विद्या जो है भगवान ने स्वयं परिणत किया है। ये 9वें अध्याय में मिलेगा भागवत में। विष्णु के दूत बता रहे थे यमदूतों को कि धर्म क्या है, तो उसमें धर्मा तो सक्षात भगवत प्रणीता। और भगवान जो चीज बोल दिए हैं वही सत्य है। जैसे विश्व के किसी कोने में सूर्य जिस दिशा में उदित होते हैं उसी को हम इष्ट मान लेते हैं, पूरब दिशा मान लेते हैं, वैसे ही भगवान जो बोल दिए हैं वही सत्य है। इससे इसके अलावा और कुछ सत्य हो नहीं सकता है। तो हमें हर व्यक्ति के कर्तव्य है कि जहां भी रहे, गृह ठाको बने ठाको जिस अवस्था में रहे, भगवान का नाम लें। हम किसी को अपना घर द्वार त्यागने के लिए नहीं कहा जाता है कि अपना घर द्वार छोड़ दो, काम को सात्विक रूप से घर में खाना बनाए दे, सात्विक रूप से खाना बनाए, सात्विक रूप से रहें, सात्विक रूप से जीवन यापन करें और उसके साथ में भगवान अपने हर कार्य को करते हुए उसको जोड़ देना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक है, फैन है, फैन का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उसमें इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं दिया जाता है, वैसे कनेक्शन देते ही फैन अपना काम करने लगता है। वैसे ही हम शरीर और आत्मा में अनुनाश्रय सभी संबंध है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। शरीर जिस तरह से हमें प्राप्त होता है उसमें भजन, मनुष्य शरीर तो बहुत दुर्लभ के साथ में मिला है और इस शरीर से ही हम भजन कर सकते हैं, इस शरीर से ही हम एक रिश्ते अपनाते हैं। तो हमें रिश्ते, हम सांसारिक रिश्ते तो बनाए हैं, एक रिश्ता हमें बना लेना चाहिए भगवान से कि भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, यही हमारे जगत के पिता हैं। तो पिता के प्रति क्या कर्तव्य हम साधारण सोच सकते हैं और उनको चाहिए। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रत्यक्षत तदाम भक्ति उपरीतम, बोलते हैं कि पत्र पुष्प कुछ नहीं हो तो पत्र भी, तुलसी पत्र पुष्प फल और जल हमको अर्पित करो, प्रेम से यदि अर्पित करते हो तो मैं उसको ग्रहण करता हूं, मैं प्रेम से अर्पित करने से प्रेम से ही ग्रहण कर रहा हूं। और हमारे पास सामग्री हो तो अच्छा से ऐसा भगवान के लिए भोग्य पदार्थ बनाना चाहिए और भगवान को अर्पित करना चाहिए, इससे भगवान खुश रहते हैं। खुशी जानना चाहिए, एक पत्नी जानती है कि हमारे पति कैसे खुश होते तो उनके अनुसार वो कार्य करती है, पति जानते हैं कि हमारी पत्नी कैसे खुश तो उसके अनुसार खुश रहते हैं, करने प्रयास करती है। एक माँ जानती है कि हमारा बेटा देने से क्या क्या, छोटा बालक भी देने से क्या क्या खुश होता है तो वो प्रयास करती है वो देने के लिए। वैसे ही हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान किस तरह से खुश हो, हम कैसे उनका बन कर रहे हैं, उनका बनकर जैसे जिस विधि से रहेंगे वही हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है और उसी से प्रेम उत्पन्न होता है। और भगवान का नाम बार बार लेना चाहिए, हमेशा लेना चाहिए, निरंतर लेना चाहिए। इसमें कोई 16 माला, भक्तों को 16 माला कहा जाता है जप करना है, मतलब वो कम से कम, तो देखिए नियम तो सबके लिए बराबर है, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो। भगवान की दी हर वस्तुओं का प्रयोग हम सब करते हैं, भगवान ने निःशुल्क रूप से हवा दिया है, निःशुल्क रूप से पानी दिया है, हम घर में इलेक्ट्रिक जलाते हैं तो उसके लिए हम शुल्क देते हैं, फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रिक जलाते हैं उसके लिए शुल्क देते हैं, पानी के लिए हमें शुल्क देना पड़ता है। लेकिन भगवान ने अमूल्य शरीर दिया है, इस शरीर की थोड़ा भी कुछ चीज बिगड़ जाता है तो दांत में दर्द हो गया, कान में दर्द हो गया, हार्ट में कुछ तकलीफ हो गया तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, पैसा भी बहुत खर्चा करते हैं, हमारे बहुत मेहनत की कमी नहीं की पैसे सब चले जाते हैं और फिर उन डॉक्टर को हम सहानुभूति उत्पन्न करते हैं और सहानुभूति देते हैं कि आपकी कृपा से यह सब हुआ। लेकिन सही सलामत रूप से भगवान की कृपा से ये सब हमें प्राप्त हुआ है, हमें उनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये सब बात को विचार करके हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान कैसे खुश रहते हैं, और ये सब चीज़ें हमें गीता से प्राप्त होती है और भगवान ने गीता में ये भगवान गीता जो है भगवान की खुद की वाणी है और ऐसी वाणी है जो किम कर्तव्य अर्जुन को दिया गया था उस समय जब उसको समझ में ही नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। तो अर्जुन को ज्ञान दिए अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन को ज्ञान दिए हम लोगों के लिए, क्योंकि जहां कृष्ण है, जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं हो सकता। कृष्ण सूर्य सम है, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार ही नहीं है, आ ही नहीं सकती है। जहां सूर्य है वहां अंधकार आ ही नहीं सकता है। तो भगवान मोह बस में अर्जुन को डालकर हम जीवों को कल्याण के लिए गीता और भागवत दी है। जीवे रे कृपाए कृष्ण कैला वेद पुराण, जीवों पर कृपा करने के लिए वेद और पुराण है। हम कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो लैपटॉप को चलाने की एक विधि पुस्तिका मिलती है। और भी कोई चीजें हम खरीदते हैं तो उसकी एक पुस्तिका, गाइड पुस्तिका मिलती है कैसे वो चलाया जाएगा। वैसे ही जीवन के, इस जीवन को चलाने की पुस्तिका है भागवत गीता। भागवत गीता जो भगवान की स्वयं वाणी है, इसे हर व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए। हर व्यक्ति को इसको सम्मान के साथ में रखना चाहिए। हर व्यक्ति को गीता को प्रणाम करना चाहिए और इसको कभी, इसको थोड़ा पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्ण।
वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगनललिता श्रीशाखान्वितां हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम